Hare Krishna, I have a very good fortune to hear His Grace Rukmini Krishna Prabhuji on Srimad Bhagavatam, 10th Canto, 16th Chapter, verse number 16, on 3rd of August, 2008, Sunday. Hare Krishna.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Grantha Srimad Bhagavatam, Dasham Skand, 16th Adhyay, 16th Shlok. Tan Tatha Katarana Vikshaya Bhagwana Madhavaha Balaha Prahasya Kinchita Na Uvacha Prabhavagya Anujasya Sa Tanstatha Kataran Viksha Bhagavan Madhavo Bala Prahasya Kinchinovacha Prabhavagya Anujasya Sa Tanstatha Kataran Viksha Bhagavan Madhavo Bala Rahasya Kanchinovacha Prabhavagya Anujasya Cha Tanstatha Kataran Viksha Bhagavan Madhavo Bala Rahasya Kinchinovacha Prabhavagya Anujasya Sa.
आप सब एक साथ दोहरा सकते हैं.
बहुत बहुत धन्यवाद. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों द्वारा ताम उन्हें तथा इस तरह कातरान व्याकुल वीक्षा देखकर भगवान भगवान माधवा समस्त योग विद्या के स्वामी बला बलराम प्रहस्य मुस्कुराते हुए किंचित थोड़ा सा ना नहीं उवाच कहा प्रभवाज्ञ बल को जानने वाले अनुजस्य छोटे भाई के सा उन्होंने अनुवाद समत दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असामान्य बल का पता था. तात्पर्य श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं अतः उनसे अभिन्न हैं. वस्तुतः वे पृथक रूपों में एक ही परम सत्य हैं. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान बलराम हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कृष्ण मेरे शेष नाग रूप वाले मुझसे कभी नहीं खेलते लेकिन अब वे काल्य नामक सामान्य संसारिक सर्प से खेल रहे हैं. यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण तथा बलराम ने क्यों अपने प्रिय भक्तों को काल्य नाग की कुंडली के भीतर कृष्ण के बंदी रहने की क्षणिक अवधि तक इतनी वेदना में रखा. यह स्मरण रखना चाहिए कि क्योंकि वृंदावन के वासी नितांत मुक्त आत्मा थे अतएव उन्हें भौतिक भावों का अनुभव नहीं हुआ. जब उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा तो उनका कृष्ण के लिए प्रेम परिकाष्ठा तक पहुंच गया और इस तरह वे उनके प्रेमाभाव में पूर्णतया मग्न हो गए. सारी परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा अन्यथा यह दिखाई नहीं पड़ेगी. हरे कृष्ण. आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सुबह की कक्षा में.
क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव 24 तारीख को आ रहा है, जो कि चौबीस अगस्त को हम सब भक्तों के लिए अति हर्षोल्लास का उत्सव जन्माष्टमी आ रहा है। तो हर वर्ष की भांति जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 3-4 सप्ताह का हम प्रयास करते हैं कि दशम स्कंध से पाठ किया जाए। जन्माष्टमी के लिए सभी भक्त लोग तैयारियों में जुड़ जाते हैं, लेकिन वास्तविक तैयारी ये है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। तो एक निष्ठावान सिंसियर भक्त के लिए प्रतिदिन जन्माष्टमी है, क्योंकि जन्माष्टमी का अर्थ है कृष्ण का जन्म हो। तो अभी पता नहीं कितनी ही जन्माष्टमी हमने बता दी हैं, लेकिन हमारे हृदय में परिवर्तन अभी नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो ये तैयारी आंतरिक तैयारी है, तो बाहरी तैयारियों की भागदौड़ में हम आंतरिक तैयारी को भूल जाते हैं कि बाहरी तैयारियां पंडाल लगाना है, कलेक्शन करनी है, ये करना, उसमें लगे रहते हैं, लेकिन जो अंदर की तैयारी है, जो हमारे हृदय को शुद्ध करना है, उसको हम भूल जाते हैं। अच्छा, तो हृदय को शुद्ध करना प्रतिक्षण हमारा मनन होना चाहिए, लेकिन ये एक रिमाइंडर है जन्माष्टमी का कि देखो भगवान अवतरित हुए थे हम सबको वापस भगवत धाम ले जाने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? भगवान तो यहाँ पे आते हैं, अवतार लेते हैं हम सबको निमंत्रण पत्र देने के लिए, इन्विटेशन लेटर, प्लीज कम, आइए मेरे घर आइए, प्लीज वापस आइए। भगवान इसलिए अवतरित होते हैं, कितने कृपालु हैं भगवान श्री कृष्ण, अपने धाम से नीचे उतरते हैं हम सबको इन्वाइट करने के लिए, आइए प्लीज, चलिए मेरे साथ चलिए, देखिए मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना आकर्षक हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, सब अचिंत्य अतुलनीय हूँ, मेरे बराबर कोई भी नहीं है, देखिए तो सही, मेरा मेरे साथ आप आएंगे आप आनंद ही आनंद पाएंगे। तो भगवान तरह तरह की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं हमें अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, ताकि हम उनसे आकर्षित होकर वहां जाएं। लेकिन अभी हमारे नित्यवत जीव वो हैं जो कि अनादि काल से यहां भटक रहे हैं कृष्ण को भूलकर। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की, श्री श्री गौर निताय की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अनादि काल से हम लोग भटक रहे हैं इसी भौतिक संसार में, तो हमें भौतिक संसार कृष्ण से ज्यादा आकर्षक लगता है। कृष्ण सर्व आकर्षक है, लेकिन सर्व आकर्षक से ही बड़ा आकर्षण हमारे लिए भौतिक संसार की सुंदरता है, तथा कथित सुंदरता। तो हम यहाँ पे हमेशा बधे रहते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाओं में बहुत शक्ति है। तो बार बार हम श्रवण करेंगे, बार बार हम कीर्तन करेंगे, तो धीरे 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 हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाएगा और प्रेमय संबंध को हम स्थापित कर पाएंगे। तो वास्तव में जब जन्माष्टमी आ रही है तो हमारा इस बात पे मनन होना चाहिए कि आंतरिक रूप से मैं कितना तैयार हूं। क्या मैंने कृष्ण का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है? अगर निमंत्रण भी स्वीकार कर लें तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, कृष्ण मैं आना चाहता हूं, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, निमंत्रण ही स्वीकार नहीं है। देखिए, हमें कोई निमंत्रण देता है, बस पत्र लिया रख दिया, नहीं आना, अभी नहीं आना, अभी नहीं आएंगे, देखेंगे बाद में कभी आएंगे। तो हमने निमंत्रण भी अभी स्वीकार नहीं किया। तो एक बार हृदय से निमंत्रण तो स्वीकार कर ले कि हाँ कृष्ण मैं आना चाहता हूं। कृष्ण ने यही कह दो, कह तो दो कि हाँ निमंत्रण स्वीकार है, बाकी मैं संभाल लूंगा। हम लोग इतने डीट हैं कि हमने निमंत्रण भी अभी स्वीकार नहीं किया। तो ये सारी जो हमारी साधना भक्ति है, वैदिक साधना भक्ति है, हम सुबह जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं भागवतम का, प्रसाद सेवन करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि एक बार वो इच्छा जागृत हो जाए निमंत्रण स्वीकार करने की। एक इच्छा, बस वो इच्छा जागृत होते ही हम वापस भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसी प्रयास में हम लगे हैं। तो जन्माष्टमी से पूर्व में दशम स्कंध शुरू करते हैं। तो पिछले वर्ष तक 15वें अध्याय तक हमने पाठ कर लिया था, और पिछले दो दिन से हम 16वें अध्याय का पाठ शुरू किया है, और ये है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सबको प्रिय हैं। श्रील प्रभुपाद कृष्णा पुस्तक के भूमिका में लिखते हैं कि तीन तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक तो है मुक्त जीव, जो पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। एक है मोक्ष भू, जो मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा स्तर है बिल्कुल भौतिकवादी लोगों का, जो भौतिकता में लिप्त हैं। तो चाहे आप मुक्त हैं, चाहे आप मोक्ष भू हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, या चाहे आप पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त हैं, इन तीनों वर्ग के लोगों के लिए कृष्ण कथा आकर्षक है। तो जो कृष्ण कथा से आकर्षित नहीं है तो वो क्या है, बिना पशुना निवृत्त ऋषि उपगीय माना भवौषधीश और मनोभिमान विरामत का उत्तम श्लोक के गुणानुवाद पुमान विरजित बिना पशुगुनात। अगर इतनी सुंदर कृष्ण लीलाओं से जो आकर्षक नहीं है वो स्वयं अपनी आत्महत्या कर रहा है, या तो पशुघाती है यानी कि वो पशुओं का हनन करता है, या फिर अपना हनन कर रहा है, तो ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण कथा से आकर्षक नहीं होगा। अन्यथा पूरा रोमांचकारी है कृष्ण कथा, हम सुनेंगे आप देखेंगे पूरा रोमांच से भरा हुआ है। जैसे हम लोग ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की एक विकृत छाया है, हम लोग सिनेमा देखने क्यों जाते हैं, कि बहुत रोमांचक है, सब कुछ है उसमें, उसमें कॉमेडी के भी सीन हैं, उसमें भावुकता रोने धोने के भी सीन हैं, उसमें लड़ाई के भी कुछ दृश्य हैं, पूरा एक मसाला है वहां पे जो कि हमें संतुष्ट करता है कुछ समय के लिए, तो बहुत रोमांचकारी लगता है। तो कृष्ण कथा ऐसी पूर्णतया रोमांचकारी है, आप देखेंगे कृष्ण लीला में सब कुछ हमें मिलेगा जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। तभी भगवान का नाम है गोविंद, और तभी सुखदेव गोस्वामी जी शुरू के अध्याय में बोलते हैं कि ये गोपाल उदर चरितम, जो गोपाल उदर चरितम है यानी ग्वाल बाल के रूप में उदार चरितम, भगवान की लीलाएं बहुत उदार करने वाली हैं, सबका उद्धार करने वाली हैं। जैसे कि गोपियां भी क्या कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीदतम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणाति ये भूरिदा जनम। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो आपकी कथाओं का अमृत है, तप्त जीवनम, इस संसार का जीवन तपते, तीन तापों से हर व्यक्ति प्रताड़ित है, लेकिन आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत तुल्य हैं। कभी भी ईदतम कल्मशापहम, तो जब बड़े बड़े मुनिगण इसका कथन करते हैं तो सारे के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। श्रवण मंगलम, इसका श्रवण बहुत ही मंगलकारी है। श्रीमदाततम, ये जो इसका शब्द ध्वनि है ये आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। भूमि गृणात ये भूरिदा जना, तो ऐसे लोग जो आपकी कथा का प्रचार पूरे विश्व भर में करते हैं, इनसे बड़ा और कोई दयालु नहीं है, क्योंकि इस संसार में और कुछ किसी और चीज से और वस्तु से हमें आराम नहीं मिल सकता, हमें इन तापों से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, केवल कृष्ण कथा ही है जो इन तपते हुए संसार में हमें कुछ ठंडक पहुंचा सकती है। तो ये जो अध्याय है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना, ये लीला भगवान की कैशोर लीला है। कैशोर लीला का अर्थ है कि भगवान की जब आयु 10 से 15 वर्ष की होती है तो कैशोर अवस्था बोलते हैं, तो ये कैशोर अवस्था की प्रारंभ में ही है। लगभग भगवान की आयु इस समय 10-11 वर्ष है। तो कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में निकलते हैं, अक्सर उनके साथ बलराम जी होते हैं, लेकिन एक बार बिना बलराम जी के कृष्ण वन में चले गए। एक बार पहले भी कृष्ण बिना बलराम जी के गए थे, तब भी बहुत बड़ी लीला हुई थी। कौन सी लीला हुई थी तब? ब्रह्म विमोहन लीला, तब ब्रह्मा जी ने सब को चुरा लिया था। और आज भी बहुत बड़ी घटना होने वाली है, भगवान बलराम जी के बिना वनों में चले गए हैं, और वहां पे ग्रीष्म ऋतु है, और गायों को चराने के बाद ग्वाल वालों का मुख सूख गया, उनको प्यास लगी, गायों को भी बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यमुना के जल को पी लिया। तो जैसे यमुना को जल को पिया तुरंत वो मूर्छित हो गए। मूर्छित क्या हो गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वैसे तो भगवान के जो पार्षद हैं उनका सच्चिदानंद शरीर होता है, लेकिन यमुना को जल के पीते ही वो बिल्कुल मृत हो गए। तो भगवान ने जब देखा तो भगवान कुछ क्षण के लिए परेशान हुए, फिर भगवान ने क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली, और कृपा दृष्टि डालने का अर्थ है जैसे भगवान ने उनको अमृत दे दिया हो, भगवान की आंखों से जैसे अमृत बरसा हो। तो जैसे कृपा दृष्टि ग्वाल बालों पर पड़ी और गायों पर पड़ी, सबके सब पुनः जीवित हो गए, और जब पुनः जीवित हो गए तो सब बहुत ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, तो एक दूसरे को सबने गले लगाया, बोले क्या हो गया, बोले निश्चित रूप से कृष्ण ने हमारी रक्षा की है, कृष्ण योगेश्वर है, अगासुर के मुख में जब हम घुसे थे तभी कृष्ण ने हमारी रक्षा की थी। तो सब लगता है कृष्ण ने हमारे ऊपर संजीवनी रस हमारे ऊपर बरसाया है। तो आचार्यगण बताते हैं कि यही हम सबकी हालत है, हम लोग भी आध्यात्मिक दृष्टि से मृत हैं, और जब कृष्ण की कृपा दृष्टि हमारे पर पड़ेगी तब हम जीवित हो जाएंगे। जो जीव कृष्ण भावना भावित नहीं है वो मृत है। हम लोग यहां सुबह सुबह आते हैं, भगवान जी का दर्शन, राधिका रमन जी कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, वास्तव में अभी हम दर्शन नहीं कर पाते, इन भौतिक आंखों से हम भगवान का क्या दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए किसी ढंग से राधिका रमन जी हमारे पे कृपा दृष्टि डाल दें। हम जितना भी नाचते कूदते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, श्रवण करते हैं, बस एक बार एक कृपा दृष्टि पड़ जाए राधिका रमन जी की तो हम जीवित हो जाएंगे। तो बस अक्रूर जी अपनी प्रार्थना में यह बोलते हैं कि मनुष्य जीवन तभी सिद्ध होगा जब भगवान हमें पहचान लें कि हाँ ये जीव है, ये प्रयास कर रहा है। बस तो मनुष्य जीवन में केवल पूर्णता सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने राधिका रमन जी के ध्यान को अपने प्रति आकर्षित करना है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के ध्यान को अपने प्रति आकर्षित करना चाह रहा है। एक युवा युवती को इंप्रेस करना चाहता है, युवती युवक को इंप्रेस करना चाहती है, तभी हमारी वेशभूषा, हमारी नई नई हम गाड़ियां लेते हैं, हमारा चाल ढाल सब इस ढंग से होता है, किसी न किसी का ध्यान अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। तो उन सबको भूलकर हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए किसी ढंग से कृष्ण को अपने प्रति हम आकर्षित कर सके। तो एक कृपा दृष्टि पड़ गई तो हम जीवित हो जाएंगे, हम पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित हो जाएंगे। तो सारे ग्वाल बाल पुनः जीवित हो गए। लेकिन भगवान ने सोचा कि अब मैंने अवतार यहां पे इसीलिए लिया है कि जितने भी द्वेषी जीव हैं उनका मैं दमन करूं। तो इस यमुना में कौन रह रहा था? कालिया नाग। कालिया नाग बहुत ही भयंकर, कालिया नाग के अंदर इतना जहर था कि पूरा का पूरा यमुना का जल गर्म होकर उबल रहा था और यमुना के जल का रंग बदल गया था, सुनहरे पीले रंग की तरह यमुना का जल हो गया था और बिल्कुल जैसे धुआं निकल रहा हो, और उसमें इतना जहर हो गया था कि उस यमुना के ऊपर से कोई पक्षी भी निकलता था तो मर जाता था। आसपास की सारी वनस्पतियां सूख गई थी और अब उस यमुना में केवल कालिया रहता था, कालिया अपनी पत्नियों के साथ और अपने परिवार के साथ और कोई नहीं। शिवजी गोस्वामी पाद बताते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यमुना जी में अपने उदर में एक आग का गोला संभाल के रखा हुआ है। तो पूरा यमुना का जल उबल रहा है और पूरा जहर से भरा हुआ। तो कृष्ण ने सोचा अब समय आ गया, अब मुझे इस कालिया का दमन करना चाहिए, इसको यहां से भगाना चाहिए। तो कृष्ण तुरंत चले गए कदम वृक्ष के ऊपर, और एक कदम वृक्ष अक्सर वृंदावन में ही पाया जाता है। इसके ऊपर पीले रंग के गोल गोल फल फूल होते हैं और आचार्य बताते हैं कि यह कदम वृक्ष गगनचुंबी था, बहुत ऊंचा। तो कृष्ण उसके ऊपर चढ़ गए और देखिए वृंदावन में जितनी भी भगवान की लीलाएं होती हैं वो माधुर्य प्रधान है। भगवान समय समय पर अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं लेकिन अपनी लीला शक्ति से इस ऐश्वर्य को ढक देते हैं और ब्रजवासियों को मालूम नहीं चलता कि भगवान के ये ऐश्वर्य है। बचपन से ही भगवान ऐश्वर्य दिखा रहे हैं अपना, तरह तरह के राक्षसों का वध कर रहे हैं लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को लगता है कि ये हमारी तरह कोई साधारण बालक है। तो इतना बड़ा नाग इसका दमन करने जा रहे हैं लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल टोटली रिलैक्स, पूर्ण रूप से शांत मुस्कुराते हुए। तो अब कृष्ण लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अब लड़ाई की तैयारी करने के लिए नहीं कि कृष्ण बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए चले गए वृक्ष के ऊपर। तो कृष्ण ने सबसे पहले अपने बालों को गूंथा, फिर उसके ऊपर एक पगड़ी बांध ली, फिर कमर पे कस के और फिर अपनी बाजुओं को यूं किया। अब कितनी आयु थी कृष्ण की? 10-11 वर्ष। बहुत ही कोमल शरीर, पतली सी कमर, इतना कोमल भगवान श्री कृष्ण का शरीर है कि जब यशोदा मैया उनका आलिंगन करती थी तो उनको लगता जैसे मक्खन का आलिंगन कर रही हूं, ऐसे है कृष्ण। और वही इतने कोमल शरीर ने 7 वर्ष की आयु में अपने बाहिने हाथ की छोटी सी उंगल पे गोवर्धन को उठाया था। यह हमारे शरीर का सबसे कमजोर अंग होता है। तो ऐसे कोमल, बिल्कुल पतली सी कमर, युवक, मुस्कुराते हुए सुंदर कृष्ण। तो नीचे ग्वाल बालों को बोल रहे हैं चिंता मत करो मैं अभी आया, तुमने क्या करना है बस गायों का ख्याल रखो, मैं अभी आ रहा हूं। अब ग्वाल वालों को क्या मालूम था कि अब ड्रामा शुरू होने वाला है कि चिंता मत करो अभी उनकी चिंताएं कितनी बढ़ेंगी आगे देखेंगे, जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूं बस। उनको बोला ये तो हमेशा कुछ चमत्कार करते रहते हैं तो उनके लिए तो एक खेल है। तो कृष्ण के लिए सारा खेल है, ये लीलाएं हैं, बस खेल कूद चल रहा है, ड्रामा अभी आया। और कृष्ण ने जोर से कूदे कदम वृक्ष के ऊपर से नीचे कूदे और कूद कर इतनी गहरी कृष्ण ने कूद लगाई बिल्कुल यमुना के अंदर तक चले गए। तो ग्वाल वालों को ऐसे लगा जैसे पाताल लोक में चले गए हैं कृष्ण, बिल्कुल गहराई तक अंदर चले गए। और जब कृष्ण गिरे, हल्के फुल्के से कृष्ण है, लेकिन इतनी जोर से आवाज आई जैसे पता नहीं क्या पूरा ब्रह्मांड गिर गया हो। और वास्तव में पूरा ब्रह्मांड तो है ही, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड कृष्ण के उदर में है। तो आवाज इतनी जोर से आई और चारों तरफ से यमुना का पानी फैल गया, जैसे यमुना में बाढ़ आ गई हो। अब सारे ग्वाल वालों को कृष्ण बोल के गए थे, चिंता मत करना अभी आ रहा हूं। उबलता हुआ जहरीला यमुना का पानी उनकी तरफ दौड़ते हुए, बोला ये क्या कर दिया, सबकी सब गाय और ग्वाल वाल पीछे भागे, सब पीछे हटे अपने अपने को बचाने के लिए। और यमुना का पानी फैल गया पूरा, और अब कृष्ण उसमें ऐसे तैर रहे हैं कोई मतवाला हाथी जैसे, और छपाक छपाक करके ऐसे आवाज निकाल रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण जो भी करते हैं उसमें मधुरता होती है, तो कृष्ण ऐसे पगले हाथी की तरह तैर रहे हैं, उसमें भी बहुत ही संगीतमय ध्वनि निकल रही है। तो जब इतना पूरा का पूरा यमुना नदी हिल गया, तो कालिया को लगा ये कौन आ गया, किसकी हिम्मत हो गई, किसकी हिम्मत हो गई, किसकी ये दुर्लभ हो गई कि यहां पे आके ऐसा कौन व्यवहार कर रहा है। तो कालिया हुंकारता हुआ बाहर निकला, तो उसने क्या देखा कि सामने बहुत ही सुंदर एक बालक खड़ा है, जिसका वर्णन यहां नौवें श्लोक में होता है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम शिवत्स पीतवस्न स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभ्यम कमलोदरांग्रे संदश्य मर्म सुरुषा बुझया चछाद। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, कालिया ने देखा, तम प्रेक्षणीय कि देखने में बहुत आकर्षक है, सुकुमार अत्यंत ही नर्म, बहुत डेलिकेट, घना अवदातम सफेद बादल की तरह चमकता हुआ, श्रीवत्स श्रीवत्स का चिन्ह है, पीत वस्नम किस कौन से रंग के कपड़े डाले हुए हैं, पीत पीतांबर पीले रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, स्मित सुंदर आस्यम हंसते हुए। देखिए कितना गुस्सा आ जाएगा कालिया को, भगवान किसी का अहंकार का दमन करते हैं इसी ढंग से। इतना बड़ा कालिया नाग जिसमें पूरे यमुना में केवल वही रह रहा है और सब उससे डर रहे हैं, एक सुंदर सा कोमल सा मुस्कुराता हुआ बालक उसके सामने खड़ा है, तो कितना गुस्सा है, कितना अहंकार उसका उस पर आक्रमण हुआ होगा। स्मित सुंदर आस्यम क्रीडंतम, खेल रहे हंसते हुए खेलते हुए, अप्रतिभयम अन्यों को भय के बिना, कमल उदर अंग्रिणम संदश्य कमल के भीतरी भाग जैसा, अंग्रिगम जिसके चरण है वो कमल के भीतरी भाग की तरह है, मर्मसु रुषा भुजिया चछाद, और अब उसे रहा नहीं गया। बोले ये हो सकता है सुंदर हो, आकर्षक हो, कोमल सा बालक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको अपनी कुंडली में लपेट लिया। तो द्वेषी जो नाग होता है बहुत द्वेषी होता है, तो कालिया इतना द्वेषी जीव था, लेकिन वो भी कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित हो गया। वास्तव में कृष्ण इतने सुंदर हैं, कोमल से मुस्कुराते हुए हमेशा ही कृष्ण ऐसे रहते हैं, कृष्ण के चेहरे पे कोई तनाव नहीं है कभी भी, हमेशा कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। रसो वही सा श्री प्रभुपाद कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर आनंद घन, कृष्ण ही आनंद के स्रोत हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक आनंद घन है, एक रिजर्वायर है, कोई और भी होगा। ठीक है, मान लिया कृष्ण आनंद के घन है तो कोई दूसरा भी होगा छोटा मोटा आनंद का घन, नहीं, केवल कृष्ण ही है। और ऐसी परिस्थिति में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कोई भय नहीं है। तो हम लोग भी जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, दर्शन करते हैं, वेणु कमणंतम अरविंदलाय ताक्षम वरहवत्समचितामोदम सुंदरांग कंदर्प कोटिकामनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो हम भी प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं, भगवान की सुंदरता का गुणगान करते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हमारी स्थिति भी कालिया नाग की तरह ही है। कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, कि आप आदि पुरुष हैं लेकिन भोक्ता राम मैं ही हूं, आप आदि पुरुष हैं लेकिन भोक्ता मैं हूं। जैसे कालिया को लगा कि ये कैसे मेरे यमुना में आ गए, इसी ढंग से हमें लगता है नहीं, भोगता तो मैं ही हूं, इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं मेरे भोग के लिए हैं। आप आदि पुरुष हो सकते हैं, बहुत सुंदर हो सकते हैं, लेकिन असल में पुरुष तो मैं ही हूं। तो ये दिखाता है हम कृष्ण से स्पृधा करते हैं, जब स्पृधा करेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। कृष्ण से हमें स्पृधा नहीं करनी, कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। तो कालिया नाग ईर्ष्यालु था और उसने इतने सुंदर बालक कृष्ण को भी देखा तो यानी कि उसने तुरंत कृष्ण की शरण ले लें, नहीं, जी गोस्वामी पाद तो बताते हैं उसने कृष्ण को डसा, जोर से उस पर आक्रमण किया और उसको डस लिया और फिर अपनी कुंडली में उसको लपेट लिया। तो जब कालिया नाग ने कृष्ण को अपनी कुंडली में लपेट लिया तो वह सोच रहा था ये कौन है, कैसा बालक है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने के। फिर ज्यादा सोचा तो उसको लगा अच्छा ये वही बालक है जिसने अघासुर का वध किया था, लेकिन छोटा सा बालक इतना विशाल का अघासुर का वध कैसे कर सकता है, तो निश्चित रूप से इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां होंगी, ये अपना बहुत ज्यादा विस्तार कर लेता होगा, नहीं कोई बात नहीं, अब मैं भी अपना विस्तार करता हूं और पूरी शक्ति लगाता हूं कि इसका गला घोंट कर इसको मार दूं। तो कालिया नाग ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, कोमल से कृष्ण को हमने असंख्य फनों से, हजारों फन थे उसके, उसे बिल्कुल लपेट लिया और पूरी शक्ति से उसको दबाने का प्रयास किया। तो क्या होता है, जब ये हालत भगवान की देखी तो आसपास जो तट पर खड़े थे ग्वाल बाल वो देखकर परेशान हो गए, अरे कृष्ण ने बोला था अभी आ रहा हूं, तो अब कृष्ण बिल्कुल कालिया नाग की पकड़ में आ गए हैं और कृष्ण ने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, कृष्ण बिल्कुल संघर्ष नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, ऐसे चुपचाप। तो सबको लगा गए कृष्ण, अब तो गए। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण जीवन है, कृष्णा इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कृष्णा इज देयर लाइफ। हम लोगों के तो जीवन के एक भाग हैं कृष्ण, 24 घंटे में से 2-3-4 घंटे बस मैक्सिमम, इसके अलावा और कृष्ण नहीं, लेकिन ब्रजवासियों का पूरा जीवन ही कृष्ण है। और जब देखा कि अब कालिया नाग ने कृष्ण को ले लिया तो उनका पूरा जीवन गया, बिल्कुल वो ऐसे गिरे जैसे किसी वृक्ष की जड़ काटती जाए, थक से वो गिर जाए, बिल्कुल गिर गए, मूर्छित अवस्था में आ गए। और आसपास भी कुछ और ग्वाल बाल थे, सबके सब भागे आए, सारी सारी गायें आई, बैल आए, बछड़े आए और सब रो रोकर पुकार रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और बता रहे हैं आचार्यगण कि उनके आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे, आंसू भी सूख गए, इतना उनको देखकर वो स्तब्ध हो गए कि ये हुआ क्या है। अभी तक हर खतरे से कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, अब कृष्ण स्वयं इतने बड़े खतरे में है, अब कौन बचाएगा कृष्ण को। तो उनको लग रहा था कि जैसे वो स्वयं एक जहर के समुद्र में डूब गए हैं, अब जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, अब पूरा का पूरा जगत बिल्कुल शून्य के समान है। तो इसके बाद क्या हुआ कि तीनों जगह पे, पृथ्वी में, आकाश में और जीवों में अशुभता के लक्षण उत्पन्न होने लगे, भूचाल आना शुरू हो गया और तारे गिनना शुरू हो गए, जो पुरुष थे उनकी बाई आंख फड़फड़ानी शुरू हो गई, स्त्रियों की दाई आंख फड़फड़ानी शुरू हो गई। तो लगा अब कुछ गड़बड़ है, कुछ दुर्घटना हो रही है, तो सारे के सारे अपशुकन प्रकट होने लगे। तो कोई पूछ सकता है कृष्णा तो सर्व मंगलकारी हैं, तो कृष्ण के होते हुए ये अपशुकन कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि इस सारे के सारे अपशकुन इसलिए प्रकट हो रहे हैं कि देवतागण भी कृष्ण की लीला में सहयोग दे रहे हैं कि ये लीला है, एक ड्रामा चल रहा है, तो चलो और इसको बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए। जैसे जब हम सिनेमा देखते थे तो हम देखते थे कि जब हीरो और विलेन का लड़ाई चल रहा होता था तो खलनायक है और नायक है, तो ऐसी एक परिस्थिति आती थी कि खलनायक नायक को खूब मार पिटाई कर रहा है ना, नायक किसी पहाड़ के उससे चट्टान से लटका हुआ है, एक ही हाथ से पकड़ा हुआ है और खलनायक उसी पर हाथ, बस दो तीन उंगली उसके ऊपर प्रहार कर रहा है। तो जो दर्शक गण को लगा बस अभी छूटा हाथ और ही गया, अभी गया, कोई मौका ही नहीं कि कैसे अपने आप को बचा पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही था इसमें ब्रजवासियों का, कोई चांस ही नहीं है कि कृष्ण अपने आप को बचा सके, अब कोई चांस ही नहीं है कि हमारा हीरो बच सकता है। और खलनायक बस पूरी शक्ति और प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है और हीरो जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बस, और सारे के सारे दर्शकगण ऐसे बैठेंगे अभी गए अभी गए, तो बिल्कुल वही हालत है। और पीछे से बहुत जबरदस्त संगीत चल रहा है और म्यूजिक चल रहा है, ऐसा सारे के सारे दृश्य ऐसे बन जाता है कि सारे के सारे दर्शक चिंता में आ जाते हैं। तो इसी ढंग से सब देवतागणों ने कृष्ण की सहायता की, सारे के सारे अपशकुन के लक्षण प्रकट हो गए और कृष्ण बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, आसपास जहर के बादल पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा कि बस अब कृष्ण गए, तो बिल्कुल वही सीन एकदम चल रहा था। तो जब ये सब दृश्य देखा तो इन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए। अब नंद और यशोदा मैया ने सोचा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस छोटे से बालक को हमने अकेले क्यों भेजा, गलती हमारी है, हम इसका ख्याल नहीं रखते, इतने घने घने वन हैं, इतने बड़े बड़े असुर हैं, पकड़ लिया हुआ किसी ने कृष्ण को फिर से, अब गए। चूंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए और मन उन्हीं पर वार दिए थे, अतः वह उनकी महान शक्ति और ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थे, भूल गए थे कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। अभी एक दो साल पहले ही पूरे ब्रजवासियों ने एक मीटिंग की थी, जब गोवर्धन लीला हुई थी सब ब्रजवासी मिले थे, ये हो क्या रहा है, ये बालक है कि क्या है, 7 दिन तक इसने गोवर्धन उठा के रखा, ये कुछ साधारण बात तो है नहीं, नंद महाराज जी आप क्या रहस्य है बताइए, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, ये बालक साधारण हो ही नहीं सकता। तो सबने बहुत ज्यादा इष्ट गोष्ठी करके सबने बताया था, नंद महाराज ने बता दिया कि गर्ग मुनि ने बता दिया था कि बालक साधारण तो नहीं है, इसमें कुछ नारायणी शक्तियां होंगी, तो सब सर्वसम्मति से इस पे आगे थे कि बालक साधारण नहीं है, इसमें कुछ शक्तियां हैं, नारायण जैसी शक्तियां हैं, लेकिन भूल गए अब कि जगह जगह पे हमेशा इन्होंने रक्षा की। एक पहली बार थोड़ी था ऐसा संकट आया है, जब तृणाव्रत आया था तब भी पूरा का पूरा भूकंप था, एकदम जोर जोर से तूफान आया था, उठा के ले गए थे कृष्ण को, ओझल कर दिया था उनके यशोदा मैया की गोद से उठा लिया था, यशोदा मैया गोद में थे पहले, तो कृष्ण जैसे यशोदा मैया ने उनको नीचे रखा, नीचे रखते तृणाव्रत आया और उठाकर ले गया। तो इससे पहले बहुत बड़े बड़े संकट आए थे और हर बारी कृष्ण ने रक्षा की थी, लेकिन हर बारी भूल जाते थे। इस तरह उन्होंने इन अपशकुनों से यह अर्थ निकाला कि अब कृष्ण की मृत्यु हो गई है, निधनम मत्वा, कृष्ण अब मर गए हैं, और वे दुख पश्चाताप और भय से विभूत थे। बालक स्त्रियां वृद्ध पुरुष समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने निरही नवजात बिछड़े को मानती है। इस तरह वे दीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव से बाहर दौड़ पड़े, अब कहां है कृष्ण, उनको लगा अब कृष्ण गए, कृष्ण मर गए हैं, और ढूंढते ढूंढते वो यमुना के तट पर आ रहे हैं। तो फिर अब ये श्लोक है, तांस तथा कातरान विक्ष्य भगवान माधवो बला प्रहस्य किंचनोवाच प्रभावज्ञ अनुजस्य सह। तांस तथा उन्हें, किनको, सारे के सारे ब्रजवासियों को, 1 साल के बच्चे से लेके सबके वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति, साथ में गायें ग्वाले सब बछड़े सब के सब भाग रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो तांस तथा कातरान, उन्हें इस तरह, कातरण का अर्थ है व्याकुल, विक्ष्य देखकर, भगवान माधव बलहा, कौन से भगवान की बात हो रही है, बलराम जी की, माधव शब्द का अर्थ विश्वनाथ चौबे ठाकुर जी बता रहे हैं, माधव, धव का अर्थ है स्वामी, मां का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि के स्वामी बलराम, बलराम जी वहां खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, प्रहस्य मुस्कुरा रहे हैं। सारे के सारे ब्रजवासियों की बुरी हालत है, उनको लग रहा है कि कृष्ण मर गए हैं, इतने चिंतित हैं, व्याकुल होकर भाग रहे हैं यमुना की तरफ, लेकिन वहां अलराम से बलराम जी खड़े हैं मुस्कुराते हुए। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं किंचना हुआ चे, कुछ भी नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, प्रभवज्ञ प्रभावज्ञ, क्योंकि वो जानते हैं, किसके क्या जानते हैं, अनुजस्य सा, अपने छोटे भाई के प्रभाव शक्ति को जानते हैं। तो बलराम जी वहां खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की शक्ति को जानते हैं और तान तथा इस तरह से अपने व्याकुल ब्रजवासियों को देखते हुए चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तो भगवान बलराम हैं, वो कृष्ण से अभिन्न हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण बलराम में यही अंतर है कि कृष्ण कृष्ण वर्ण के हैं और बलराम श्वेत वर्ण के हैं, अन्यथा इनमें कोई अंतर नहीं है। और यहां तात्पर्य में भी लिखा जा रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से कि बलराम जी इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान ने अभी तक तो मेरे से ऐसे खेले नहीं, मैं भी तो शेष नाग हूं, अब एक संसार के साधारण नाग के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए बलराम जी हंस रहे हैं। तो सारे के सारे ब्रजवासी व्याकुल हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कोई ये पूछ सकता है कि कृष्ण और बलराम तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, क्यों ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि बिल्कुल उनका जीवन समाप्त हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि नंद महाराज यशोदा मैया की ये हालत हो रही है कि वो उस जल में कूदना चाह रहे हैं और बिल्कुल वो मूर्छित हो जाते हैं, रो रो के पुकार रहे हैं, बिल्कुल उनका जीवन समाप्त होने लगा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा, कहते कृष्ण तो आनंद देते, कैसा आनंद है, ये कोई आनंद है? तो प्रभुपाद के शिष्या तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस परिस्थिति को हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जब तक कृष्ण व्रज में रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे संकट आते ही रहे हैं, लेकिन व्रजवासियों को जितने भी ये संकट आए, व्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति और प्रगाढ़ होता गया, और प्रगाढ़ होता गया, और प्रगाढ़ होता गया। इसलिए जब भी भक्तों पे संकट आते हैं तो भक्तों का एक लक्षण होता है कि वो संकट में केवल कृष्ण की शरण लेते हैं, केवल कृष्ण की शरण, और कुछ नहीं। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं, हमारे ऊपर जब कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, जब कोई संकट आता है, पहले तो हम अपना बचाव खुद करने का प्रयास करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करेंगे कि इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, उसने गलती कर दी, उसने गलत प्लानिंग कर ली, ये सब हो गया। भूल जाते हैं कि हम ये कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अब कृष्ण की शरण ग्रहण करें, उसको हम भूल जाते हैं और हम एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू करते हैं या अपना कोई बचाव करने का नया तरीका निकालते हैं। लेकिन क्या करना है, जो भक्त हैं सीधा कृष्ण की शरण में जाएंगे, सीधा। तो जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमारा कृष्ण पर निर्भरता बढ़ेगी और कृष्ण के साथ हमारे संबंध प्रेम और घनिष्ठ होगा। तो यहां पर दिखने में लग रहा है कि सारे के सारे ग्वाल बाल गायें और सब मूर्छित हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर से वो अष्ट सात्विक विकार दिखा रहे हैं, दे आर फीलिंग द ट्रांसडेंटल एक्सटेसी। ये बात हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोग जो दुखी होते हैं ये हमारा भौतिक चेतना का भाव होता है, लेकिन ये आत्मा के इमोशंस हैं, पूर्ण रूप से आत्मा के इमोशंस हैं कि वो दुखी भी हैं लेकिन साथ साथ में उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो प्रेम की परिकाष्ठा है, ये प्रेम की परिकाष्ठा है, इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लव। इस अवस्था में आना कि हम मूर्छित हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, ये प्रेम है, प्रेम की परिकाष्ठा है। तो ये आनंद है, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है, अपने हृदय में अंतर्कण में बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं। तो इसको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं। तो अभी हम लोगों को जब कोई कष्ट आता है तो हमें सीधा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखा, इन सब कष्टों के बीच में बलराम जी मुस्कुराते हुए खड़े हैं। क्यों बलराम जी मुस्कुराते खड़े हैं? क्योंकि वो माधव हैं, बुद्धि के मालिक हैं, ज्ञानवान हैं। तो हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हमारे दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। अगर हम इस संसार की स्थिति को समझें, समझें कि मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है, मेरा और सृष्टि का क्या संबंध है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद में रह सकता है, अगर वो केवल गुरु और कृष्ण की शरण में रहेगा। गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु और कृष्ण, कृष्ण और बलराम की हम शरण में रहेंगे, हर परिस्थिति में हम आनंद में रहेंगे। तो हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय बताया है और दुख में हमेशा हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? श्री कृष्ण की। यानी कि भगवान श्री कृष्ण हमें इस संसार में प्रतिक्षण मौका दे रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरी भक्ति करो। जान के भगवान हमें प्रताड़ित करते हैं। यहाँ बलराम जी यहाँ पे ब्रजवासियों के ऊपर योग माया का आवरण है, वो भूल गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान है और हम लोग महामाया से आवृत हैं। हम भी भूल गए हैं कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं, कृष्ण भगवान हैं। तो भगवान ने संसार को दुखाले बनाया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्षण हम कृष्ण की शरण में रहें। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेगा। इस संसार में तीन तरह के क्लेश हमेशा हमें सताते रहते हैं। हर एक जीव दूसरे जीव को तंग कर रहा है, हम परेशान होते हैं, ये व्यक्ति ऐसा क्यों मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, मैं तो ठीक व्यवहार करता हूं ये गलत व्यवहार करता है। बिजनेस हो, घर हो, कहीं भी हो, पता नहीं क्यों मुझे तंग करता है। तो कुछ लोग हमें तंग करते रहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। आध्यात्मिक मन परेशान रहता है, गंदे गंदे विचार मन में आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अधिदैविक भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, इस तरह से हम प्रताड़ित रहते हैं। तो चाहे हमारा मन परेशान हो, चाहे हमें दूसरे जीव परेशान कर रहे हो, चाहे प्रकृति की तरफ कष्ट आ रहे हो, हर कष्ट प्रकार के कष्ट में हमें तुरंत कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तुरंत। ये ज्ञान है, इसको नहीं भूलना। जैसे हमारा मन परेशान हो रहा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हमें अभी बहुत ही क्लेश सता रहा हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ पता नहीं क्यों बुरा व्यवहार कर रहा है, हम दुखी हो जाते हैं, मन ही मन में क्रोधित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पहले ही हमारे इस अंतःकरण में मन में तरह तरह की छापे पड़ी हुई है, संस्कार कई जीव जन्मों के, एक और संस्कार हम डाल लेंगे और भगवान से और दूर होते जाएंगे, और दूर होते जाएंगे। ब्रजवासियों का उदाहरण लेना चाहिए, जैसा मर्जी क्लेश सताए, जैसा मर्जी संकट आए, चुपचाप कृष्ण की शरण लो, कोई और मदद नहीं कर सकता, केवल कृष्ण और बलराम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप इसको करके देखिए, आपको तुरंत परिणाम मिलेगा। जैसे ही मन में कोई गलत विचार आए, कोई दुखी करने वाला विचार आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे हम देखेंगे कि हमारा संबंध भगवान से बहुत मधुर होता जा रहा है, हम कृष्ण पर निर्भर हैं। चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा था, चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में निकल रहे थे तो साथ साथ ये कीर्तन कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षा माम, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण 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 पाही माम, हे कृष्ण मेरा पालन करो, राम राघव राम राघव रक्षा माम, हे रघुनंदन राम मेरी रक्षा करो, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम, ओ केशी मद असुर को मारने वाले केशव कृष्ण मेरा पालन करो। बस हम यही असुरक्षा डर तरह तरह के बैठे रहते हैं, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण रक्षा करो कृष्ण पालन करो, मना नहीं करें भगवान जरूर रक्षा करेंगे। हम इतने मूर्ख हैं, जहां हमें सुरक्षा मिलेगी, जो हमारी रक्षा कर सकता है, उसकी तो हम शरण ग्रहण करते नहीं, या शरण ग्रहण करते हैं तो टूटे फूटे ढंग से, संदेहों के साथ, शक के साथ, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पत्थर है कि भगवान है, मंत्र ठीक है कि नहीं है, कोई दूसरा मंत्र भी चाहिए कि नहीं चाहिए, गुरु जी ठीक है कि नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, सब तो करने रहे, मैं ही अकेला क्यों, मैं पागल हूं या वो पागल है, तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के संदेहों के साथ शरण लेते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर लेते हैं फिर पीछे आते हैं। हमारे भक्त आते हैं भगवान के साथ लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, आगे आते हैं फिर पीछे, आगे आते हैं फिर पीछे, ये क्या है, दुखी रहेंगे हमेशा, दुखी रहेंगे इस तरह से रहे। सारे संदेहों को त्याग कर पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण ले ले, पूर्ण रूप से। जैसे कोई संकट सताए, संकट तभी तो भगवान इतने संकट दिए हैं, बोले चिंता मत करो, पग पग पे संकट, पदम पदम यत विपदम, बता रहा हूं आपको, ताकि हर पल तुम मेरी भक्ति कर सको, पदम पदम यत विपदम, ये मैंने संसार की रचना ऐसा की है, पदम पदम यत विपदम, एक एक कदम पर आपको खतरा है और बचने का एक ही तरीका है, कृष्णा 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 बोलो, बोलना पड़ेगा। भगवान तो कालिया नाग भी नहीं मान रहा था, आकर्षक लगे कृष्ण, लेकिन क्यों मानूं, अहंकार था, हम भी अहंकारी हैं, ऐसा थोड़ी है, दुख थोड़ी है, कुछ तो सुख है ही, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, बढ़िया बिजनेस है, पोजीशन है समाज में, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ऐसे क्या दुख है, खुद कमाऊंगा कर लूंगा। अहंकार, कालिया नाग की तरह अहंकार। तो भगवान ने स्वयं उसके ऊपर नाचे और उसका दमन किया। लेकिन हम जैसे छोटे मोटे द्वेषी जीव के लिए भगवान खुद नहीं, माया प्रताड़ित करती है त्रिशूल से, बार 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 मारेगी माया, दुर्गा देवी जी प्रताड़ेंगे, करेंगे करेंगे, फिर हमारा भी जहर उगलेगा, फिर बोले ठीक है, हार जाएंगे जब, फिर भगवान की शरण लेंगे। तो ऐसे अच्छा है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, तुरंत शरण ले ले तुरंत। तो एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारे लिए एक बहुत सुनहरी अवसर है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। तो जब हमें एक सुनहरी अवसर मिलता है तो हम उत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे। इसलिए भक्त संकटों में भी प्रसन्न रहते हैं। एक सुनहरी अवसर है कृष्ण की शरण, और गहराई से लो, तो दुखी होने की बात ही नहीं है। इतना सुनहरी अवसर है कि मैं भगवान पे और हृदय से भगवान को पुकार सकता हूं, और हृदय से। अरे जब करो और संकट आ गए, और हृदय से पुकारूं, और हृदय से गहराई से पुकारूं, तो हमारे सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। तो ये विज्ञान है, बस इतनी बात को समझना है, हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, संसार के जीव इतने मूर्ख हैं कि संसार को दुखाले से सुखाले बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, कैसे नहीं सुख मिलेगा यहां पे, ये दुख को मैं सुख में बदल के रहूंगा। तो बोलते हैं संसार के लोग इतने मूर्ख हैं, उनको दुख ही नहीं लगता संसार। किसी से पूछो, प्रचार बोले, हम बोलते हैं संसार दुखाले हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, बोले अंगूर खट्टे हैं आपके लिए, आपको दुखी लग रहा है, हमें तो नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो लोगों को लगता नहीं कि संसार में दुख है, और जिनको लगता है दुख है तो अपनी प्लानिंग बनाते रहते हैं कि कैसे सिचुएशंस को बदल के, परिस्थितियों को बदल के मैं सुखी हो जाऊं। तो इस मूर्खता में नहीं फंसना और चुपचाप भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। तो अगर इस विज्ञान को समझ गए तो जैसे बलराम जी आराम से खड़े हैं हंसते हुए, तो हम भी इसी तरह से, भक्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास, माया के दास बेचारा हमेशा उदास, बिल्कुल मुंह लटका हुआ, चिंतित, पता नहीं क्या होने वाला है। इस संसार की समस्याएं इतनी पेचीदा हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, कोई सोल्यूशन नजर ही नहीं आता। घर घर में देखिए ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बिजनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोन ले लिया, फंस गया, अब क्या करूं क्या करूं, कुछ पता ही नहीं क्या करूं, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन, बेचारा फंसा हुआ है, कैसे करूं, चिंताएं 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 चिंताएं। माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास, उसको मालूम है एक और संकट, और शरण ग्रहण करूं, और अच्छे ढंग से माला करूं, ऊपरी ढंग से नहीं, अंतःकरण से कृष्ण को पुकारूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब हमें प्रभुपाद की बात याद आएगी कि चैंटिंग इज लाइक क्राइंग, रो, रोना कैसे निकलेगा, दुखी होंगे तभी रोएंगे, पुकारेंगे कृष्ण को, हे कृष्ण अपनी शरण में लो, रोना चाहिए, जब तक रोएंगे नहीं भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, कि रोना है कृष्ण के लिए, पुकार क्या है संकट, अपनी शरण ले रहा हूं। ये झूठे गुरु बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग का अर्थ है शीशे के सामने खड़े होकर हंसते रहो, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, इससे दुख दूर नहीं होंगे, कृष्ण की शरण लेने से दुख दूर होंगे। इस संसार की रचना इसीलिए की गई है, दुख इसीलिए बनाए गए हैं कि हम कृष्ण की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करें, दुखों को बदलने का प्रयास ना करें, दुख रहेंगे ही नहीं, फिर आनंद ही आनंद रहेंगे। तो कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है, भगवान का विद्य की लीलाओं में माधुर्य प्रधान है। तो जी गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे थे अपने भक्तों को, इतनी वेदना में डाल दिया। तो एक कारण तो ये था कि भगवान उनका प्रेम बढ़ाना चाहते थे, दूसरा एक और कारण था, भगवान की इच्छा थी कि मैं नाग के फनों पर नाचूं। ये देखो, ये हमारे भगवान, ये सारा का सारा ड्रामा जो है, भगवान अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं कि केशी घाट में वंशी वटे तो बहुत नाच लिया, कैसा लगेगा है कि नाग के फन पे नाचेंगे, चलो ये खेल करते हैं, बस ये इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने ये सारा ड्रामा किया, बताइए। इस संसार में जो देखते हैं बहुत धनी व्यक्ति होते हैं उनके भी अजीब से शौक होते हैं, इसलिए भगवान की शौक है कि चलो नाचते हैं, वहां जाके नाचते हैं, होते ना कईयों का ये शौक होता है कि मैरिज इन द एयर, एरोप्लेन में जाके उन्होंने शादी की। अमीर लोगों के होते हैं ना कि हमने कहा कि हमने हवाई जहाज में जाके हमने वरमाला की डाले एक दूसरे को, तो पेपर में आते हैं मैरिज इन द एयर है ना। कुछ लोग चले गए समोसा लेके स्पेस में, स्पेसशिप में समोसा लेके, समोसा वहां जाके खाया, इस संसार से बाहर आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके समोसा खाए। शौक है तो अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मर्सिडीज चलाते हैं तेजी से, अपना पूरा सीडी चलाएंगे जोर जोर से आवाज निकालेंगे, ऐश्वर्य प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखो मेरा ऐश्वर्य। तो भगवान अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं यहां नहीं नाचूंगा, मैं वहां नाचूंगा, नाक के फन पे नाचूंगा बस, ठीक है, इसके लिए सारी लीला के। तो भगवान बस उनसे अप्रूवल ले रहे थे ब्रजवासियों के, देखो कब नाचना शुरू करूं मैं, तो पूरा क्लाइमेक्स आ गया, बिल्कुल सब मरने वाले हैं ब्रजवासी। तो बोला ठीक है अब करूं शुरू, और फिर भगवान पलटी मारेंगे, बिल्कुल फन पे आएंगे और फिर नाचना शुरू कर देंगे। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं, तो इनका हमें आस्वादन करना है। ये लीला इसीलिए हैं कि हम इनका पल पल आस्वादन करें, और वह हृदय से जो भक्ति एक हृदय का विषय है, तो ऊपरी दिखावे को हम छोड़कर प्रयास करें कि हृदय से हम कृष्ण का स्मरण कर सकें, तो पूरे संसार में हमें बहुत अवसर मिलते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति अच्छे ढंग से कर सकें। ये भक्तों का संघ है, ये पूरे शास्त्र हैं इसीलिए हैं कि अपनी अज्ञानता को दूर करें। बहुत ही जन्माष्टमी हमने अज्ञानता में ही बिता दी कि ऐसे ही बिताई जाती है जन्माष्टमी, है ना, झूला झूल कर चाट पापड़ी खाकर ज्यादातर लोग यही जन्माष्टमी मना रहे हैं, और क्या है, झांकियां देखकर झूला झूल के चाट पापड़ी खाए, बस शोर शराबा देखकर मेले में घुसकर, वो जन्माष्टमी नहीं है। जन्माष्टमी का अर्थ है हृदय में एक क्रांति लाना, एक नए तरीके की सोच, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, तब तो है जन्माष्टमी का। ये तो बुद्धिमता है, ये तो वैसे ही चीज आ रही है रूटीन में लाइफ, एक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं है। कृष्णा इज द ओनली लाइफ, कृष्ण ही हमारे जीवन होने चाहिए बस, और कोई नहीं, ये नहीं कि ये भी वो भी ये भी ये भी और कृष्ण भी, नहीं, कृष्णा इज माई ओनली एम इन लाइफ, ओनली प्रायोरिटी इन लाइफ। फिर देखिए जहां भी रहेंगे किसी भी परिस्थिति में रहेंगे सुखी रहेंगे, जितने तामझाम हम पालेंगे अपने आप को फंसा के रखेंगे दुखी दुखी रहेंगे। जिस ढंग से कालिया नाग का दमन हुआ है तो माया देवी हमारा दमन करेगी, प्रताड़ित करते 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 एक ना एक दिन तो हमें कृष्ण की शरण में आना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? ठीक है। ग्रहराज श्रीमद्भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।
Yeah.